प्रथम पुत्र भरत का पुण्य चरित्र चल रहा है। उनकी माता का नाम यशस्वती था और यशस्वती नंदन बनकर महान यशस्वी होकर भरत, जिन्होंने अपने पिता से अयोध्या का साम्राज्य प्राप्त किया था और आयुधशाला में चक्ररत्न के उत्पन्न होने के कारण चक्रवर्ती बनने का जो उपक्रम करते हुए अपनी सेना के साथ अयोध्या से चल देते हैं, यानी अयोध्या से प्रस्थान करने के बाद जगह जगह भरत के शिविर लगते हैं और उनके जो 14 रत्न थे सब अलग अलग अपने कार्यों को संभाल करके बड़े बड़े नगर बसा देते हैं। एक जगह तो जब सबसे पहली बार भरत जी पहुंचते हैं और वहां पर जब देखते हैं बिल्कुल अयोध्या की राज सभा लगी हुई है, केवल मुझे राज सिंहासन पर जाकर बैठना है, सारे अंतःपुर के अंदर वही रानियां, वही वैभव, वही सब सभासद देखकर एक बार तो भरत भी अचंभित हो जाते हैं। लेकिन तुरंत उन्हें पता चल जाता है कि मेरे पास तो चक्र रत्न और दंड रत्न, जो ये दिग्विजय के लिए मुख्य 2 रत्न है, इष्टपति है, ये सब लोग मेरे बिना कहे ही पूरा शिविर बसा देते हैं। विजय पर्वत नाम के उत्तम हाथी पर सवार होकर चक्रवर्ती भरत ने प्रस्थान किया था अयोध्या से और उनके मस्तक के ऊपर छत्र लगा हुआ था। चलते चलते भरत का रथ गंगा नदी के किनारे पहुंचता है। उनका रथ ऐसा था जैसे जमीन पर चलता था, ऐसे जल के अंदर भी चला करता था। तो वे आगे जब पहुंचते हैं तो बिना पुरुषार्थ के ही सारे राजा लोग आगे आ आ करके उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम भरत ने पूर्व दिशा को जीत लिया, अर्थात पूर्व दिशा से सभी राजागण आकर के उन्हें अपना स्वामी मान करके, भरत को अपना स्वामी मान करके और सारा सब कुछ अपना समर्पित कर देते थे। रत्नों के थाल और तरह तरह की दिव्य सामग्री लाकर भरत को अर्पित कर देते थे। तो इस प्रकार से बिना धनुष बाण उठाए ही भरत ने पूर्व दिशा को जीत लिया। आगे चलते चलते अपनी सेना के साथ साथ बहुत सा मार्ग व्यतीत करके वे गंगा के पास आए और उसके बाद अपने अलंगनीय समुद्र को देखा, अपने समान ही जैसे भरत की कीर्ति अलंगनीय थी, किसी के द्वारा उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, ऐसे महान समुद्र को देखा और उस समुद्र के लिए वर्णन आया है कि वह समुद्र भी उपसमुद्र था। समुद्र से बाहर उछल उछल कर जो जल आता था वह गहराई में इकट्ठा हो जाता था, वही एक उपसमुद्र बन गया और यह उपसमुद्र द्वीप के भीतर रहता है, इसलिए उसका जल द्वीप कहलाता है, ऐसा वर्णन आया है। और कहते हैं कि कर्म भूमि रूप युग के प्रारंभ में जो वर्षा हुई थी तब से लेकर काल के प्रभाव से बढ़ता हुआ वही जल द्वीप के अंत भाग तक पहुंच गया था, यही सबसे अधिक गहरे स्थान में रुक जाने से उप समुद्र बन गया था। तो उस समुद्र को देखते हुए भरत ने गंगा के उपवन की वेदी के अंत भाग में सेना का प्रवेश कराया। वहां वेदिका के पास एक बड़ा भारी तोरण द्वार था जो कि उत्तर द्वार है। पूर्व द्वार से चल करके अब भरत जी आगे आगे चलते जाते हैं। धीरे धीरे सेना वन के अंदर ठहर गई। अब वहां उन्हें पता चलता है यानी समुद्र के भीतर टापू था, यानी लवण समुद्र में प्रवेश किया महाराज भरत ने। और वहां सुनते हैं कि एक मागध नाम का देवेंद्र रहता है और उसको बस में करना बड़ा कठिन काम है। भरत जैसे महान पुरुष ने भी उसको जीतने के लिए अरहंत देव की आराधना की, विजय के शस्त्रों को मंत्र तंत्रों से संस्कारित करके 3 दिन का उपवास करके पवित्र आसन पर बैठे हुए भरत ने मंत्र स्मरण पूर्वक पंच परमेष्ठी की पूजा की, पुनः विधि पूर्वक सेना की रक्षा के लिए सेनापति को नियुक्त करके स्वयं दिव्य अस्त्र धारण करके और लवण समुद्र को जीतने के लिए अजितंजय नाम के रथ पर चढ़ करके भरतेश्वर ने प्रस्थान कर दिया। सुनते रहो, बड़ा रोमांचक प्रकरण है कि उस रथ के ऊपर हरित वर्ण के ऊंचे रथ पर उस पर अग्रभाग पर चक्र के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लहरा रही थी और दिव्य सारथी उसे हांक रहा था। उस समय पुरोहित आदि खूब मंगल आशीर्वाद के शब्द बोलते हैं भरत के लिए। आगे क्या होता है? भरत सोचते हैं कि जैसे सभी राजा सारी देवतागण हां करके मेरी दासता को स्वीकार कर रहे हैं, मुझे राजा मान रहे हैं, ऐसे ही मागध देव भी आएगा और मुझे नमस्कार करेगा। लेकिन मागध देव के पास में किसी प्रकार का कोई समाचार भी नहीं और वो सबके लिए अलंघनीय था, कोई उसे जीत नहीं पाता था, बड़ा बलशाली इंद्र था। तो चक्रवर्ती सोचते हैं कि जब अब तक मागध देव नहीं आया है, सारथी से उन्हें पता चलता है कि ये तो समुद्र के अंदर जो टापू बना हुआ है उसके राजमहल में वहां पर निवास करता है। समुद्र में 12 योजन जाकर के जल के भीतर उनका रथ खड़ा हो गया और फिर उसके बाद क्या करते हैं, चक्रवर्ती को थोड़ा क्रोध आ जाता है, अभी तक मागध देव नहीं आया, और अपने धनुष को प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया, अर्थात दिव्य बाण लेकर धनुष चला दिया। तो वह बाण भयंकर क्षोभ उत्पन्न करता हुआ समुद्र के अंदर अमोघ नाम का जो उनके पास बाण था, अमोघ माने जिसकी शक्ति ऐसी होती है कि वह किसी को बेधे बिना वापिस आता ही नहीं है, ऐसे अमोघ नाम के बाण पर कुछ अक्षर लिख दिए गए। ये अक्षर लिखा, मैं ऋषभ देव का पुत्र भरत नाम का चक्रवर्ती हूं, इसलिए मेरे उपभोग योग्य क्षेत्र में रहने वाले सभ्यंतर देव मेरे अधीन हो जावे। ऐसा बोल करके उस अमोघ नाम के बाण को चक्रवर्ती ने पूर्व दिशा की ओर छोड़ दिया और ये बाण सीधे जा करके वज्रपात से भी भयंकर शब्द करता हुआ आकाश तल से मागध देव के निवास स्थान पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं लवण समुद्र के अंदर टापू है, ये मागध देव का निवास स्थान है। चक्रवर्ती भरत ने यहाँ से अपना बाण छोड़ा तो मागध देव के घर में एकदम वज्रपात जैसा शब्द करता हुआ पहुंच जाता है। ये नहीं कि मागध देव कोई मर गया, व्याकुल हो गया एकदम उस वहां पर व्यंतर देव जो वहां पर रहने वाले देव थे, उन्होंने जा करके अपने स्वामी मागध देव से कहा कि राजन यहाँ पर कोई क्षोभ उत्पन्न करने वाला ऐसा आवाज बड़ी तेज हुई है। मागध देव कहता है, ओह मैं तो वही मागध देव हूं जो किसी से जीता नहीं जा सकता, वीर योद्धा सबसे बड़े जो देवता होते हैं मैं तो उनका स्वामी हूं, और मैं भला किसी शत्रु को सहन कर सकता हूं क्या? बताओ वो बाण कहाँ है, पहले मैं अपनी क्रोध रूपी अग्नि का इसे ही पहला ईंधन बनाऊंगा, अर्थात उस बाण को भस्मसात कर दूंगा अपनी शक्ति के द्वारा। तब उसकी कुल परंपरा को जानने वाले कुछ देवता कहते हैं कि राजन, बिना विचारे कुछ मत कीजिए, पहले देखिए वो बाण किसने छोड़ा है। उस बाण पर सुना है कि कुछ लिखा हुआ भी है, तो पहले हमें सब कुछ सोच करके ही तब कुछ आगे कार्य करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप महाअभिमानी हैं, आप किसी के द्वारा पराभव को सहन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि आप इस पर चिंतन करें, पहले देखें कि बाण कहाँ से आया है, किसका है, इस बात की खोज करें। इस भारतवर्ष में चक्रवर्ती और तीर्थंकर महापुरुष निवास करेंगे, अवतार लेंगे, ऐसे भगवान के द्वारा यथार्थ वचन हम सबने अनेक बार सुने हैं। विजय को सूचित करने वाला ये बाण अवश्य में चक्रवर्ती का ही होगा। कि कौन कुल परंपरा से चले वाले आने वाले रक्षक देव देव उसे समझाते हैं मागध देव को, क्योंकि सघन अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश क्या सूर्य के सिवाय किसी अन्य वस्तु से संभव है। तो कह रहे हैं कि ये बाण चक्रवर्ती का ही है, इस पर खुदे हुए अक्षर साफ साफ दिख रहे हैं, इसलिए खूब गंध अक्षत माला आदि से इस बाण की पूजा करके हम सबको अपना राज्य अपना वैभव उस होने वाले चक्रवर्ती को सौंप देना चाहिए। ये देवताओं ने उन्हें समझाया, तब मागध देव के समझ में आया कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं। तो कुछ प्रबोध को प्राप्त हुआ, मागध देव ने कहा कि ठीक है, हम खूब रत्नों के ढेर और अच्छी अच्छी वस्तुएं अमूल्य वस्तुएं लेकर के और होने वाले चक्रवर्ती के पास पहुंचते हैं। पता चल गया उस बाण पर देखा जब कि ये तो ऋषभ देव के पुत्र हैं। वहां जाकर कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था देव कि चक्रवर्ती का बाण है, अब आप बताइए मुझे क्या करना है, हे आर्य अब मुझे स्वीकार कीजिए। वो समझ जाते हैं कि केवल अगर एक चक्रवर्ती का ही पद जिसके पास होता है वह भी परम पूजनीय होता है, हम सबके लिए आदर नहीं होता है, लेकिन इनके तो तीन तीन पद, इनके अंदर तो तीन तीन गुण हैं। पहली बात ये चक्रवर्ती, दूसरी बात ये चरम शरीरी हैं, भगवान ने बताया है ये इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, तीसरी बात ये जगत गुरु तीन लोक के नाथ भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र हैं। तो एक एक गुण ही इन तीनों में से पूज्य होता है, फिर जिनके अंदर इन तीनों का समुदाय है तो उनकी बात ही क्या है, अर्थात भरत चक्रवर्ती तो हमारे लिए बहुत ही पूज्य है। और ऐसा सोचकर वह मागध देव आता है, आप कितना सुंदर चित्रण देख रहे हैं कि उनके साथ में बहुत से संबंधित देव आते हैं और खूब सारे पिटारे के अंदर सोना चांदी रत्न अमूल्य वस्तुएं ले लेकर के आते हैं, हार वगैरह लेकर के आते हैं और चक्रवर्ती से कहते हैं, अभी जो चक्रवर्ती नहीं भी बने हैं लेकिन उन्हें चक्रवर्ती मान करके ही कहते हैं कि हे देव हे नरपुंगव, हम लोग जब आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो हम नहीं आए, तो आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, और अब आप जो हमारा ये थोड़ा बहुत धन है अपनी निधियों के नीचे भी रख लेंगे तो हमारा ये धन पवित्र हो जाएगा। यानी मागध देव पहुंच गया चक्रवर्ती बनने वाले भरत के पास और कहता है, बहुत भेंट की वस्तुएं देते हुए कहता है कि सीप बांस और हाथी में उत्पन्न न होने वाले ऐसे दिव्य मोतियों से गुथा हुआ हार आपके वक्षस्थल के आलिंगन से पूज्यता को प्राप्त हो, तथा ये दैदीप्यमान चमकते हुए दोनों कुंडल आपके कानों की संगति से पवित्रता को प्राप्त हो। देखो शब्द कितने विनयपूर्ण हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने चुन चुन करके चक्रवर्ती के योग्य और जो विनय पूर्वक एक देवता को कहना चाहिए दासता स्वीकार करने के पश्चात ऐसे शब्दों को चुन चुन करके रखा है, और उन्हें पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता ने भारत का भारत नाम के उपन्यास के अंदर इस प्रकार से संजोया है कि पढ़ते पढ़ते सुखद अनुभूति होती है और लगता है कि उन चक्रवर्ती भरत को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनके रूप गुण वैभव और उनकी भेद विज्ञानता को जान करके लगता है कि वास्तव में भरत जैसा कोई चक्रवर्ती शायद ही इस पृथ्वी तल पर हुआ। यद्यपि भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ भी हुए हैं, जो चक्रवर्ती के साथ साथ कामदेव और तीर्थंकर इन पदों से भी समन्वित थे, उन सब ने भी इसी प्रकार छह खंड को जीत करके और चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया कि भरत ने अपने पुरुषार्थ से और चक्र रत्न के उदय होने के कारण जो उन्हें निधियां, 14 रत्न ये सब चीजें मिले थी, उन सब के साथ में अपनी रानियों के साथ में खूब इंजॉय करते हुए भी, पुरुषार्थ करते हुए भी, प्राकृतिक दृश्यों को भी देखते हुए और जगह जगह अपने मंत्री आदि सेना के सेनापति सिपाही सभी के साथ में खूब धर्म चर्चा करते हुए, मनोरंजन करते हुए और इस पड़ाव को पार कर रहे थे। और उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व दिशा को जीत करके और लवण समुद्र में प्रवेश करके मागध देव को जीत लिया और उसके बाद में पूर्व के बाद दक्षिण दिशा में प्रवेश करेंगे। विजय द्वार से प्रवेश करके उन्होंने पूर्व दिशा के स्थान को, जमीन को जीता, पृथ्वी को जीता। उसके बाद पूर्व दिशा के समुद्र में जाकर के मागध देव को जीता और उसके बाद पुनः आगे जाकर अब वैजयंत द्वार की ओर प्रवेश करके और दक्षिण दिशा में जाकर अपनी विजय पताका को फहराने वाले हैं। ऐसे सम्राट चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेश्वर भगवान के रूप में हम सबके लिए परम पूज्य हैं और उनका वेद विज्ञान, उनका पुरुषार्थ, उनका पुण्य यदि प्राप्त करना है उसके समान पुण्य आदि, तो हमें भरत भगवान के समान वेद विज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। हमारी ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं, भगवान ऋषभ देव ने हमें कुछ शक्ति दी, कुछ युक्ति दी, भूगोल दिया तो जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, 3 लोक को शास्त्र के अनुसार हमने धरती पर साकार किया। भगवान भरत ने हमें भेद विज्ञान सिखाया है, इसीलिए हम आज इस सीमा तक पहुंच सके हैं और 73-74 साल की हमारी तपस्या सार्थक हुई है। ऐसे भगवान बाहुबली हमें शक्ति देते रहे, ऐसी प्रार्थना तीनों भगवान से करते हैं और तीनों ने ही अयोध्या में जन्म लिया। ऐसे अयोध्या में जन्म लेने वाले इन तीनों भगवंतों को नमन करते हुए सम्राट चक्रवर्ती भरत के चरित्र को आप आगे श्रवण करके अपने पुण्य का आवर्धन करते रहें, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। देवलो भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वर भगवान की